ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 10। अध्याय का नाम है देवताओं तथा असुरों के बीच का संग्राम। अभी लड़ाई शुरू हो चुकी है देवताओं और असुरों के बीच में, तो लड़ाई के डिटेल्स बताए गए हैं। अभी 7 से लेकर 25 श्लोक है, यहाँ पे 18 श्लोक है जिसमें परपट्स है ही नहीं, इसलिए हम सिर्फ श्लोक का जो अनुवाद है उसको पढ़ेंगे। आप इसमें नोट कीजिएगा जो कैसे कैसे जो लड़ाई होती है, जो स्टार वॉर्स होता है, जो अलग अलग प्लैनेट इंटर प्लैनेटरी वॉर्स जो होता है वो किस प्रकार से होता है और कौन कौन से उसमें अस्त्र शस्त्र युद्ध किए जाते हैं और कैसा होता है वो लड़ाई। जनरली अभी जो लड़ाई होती है बंदूक से होती है, मिसाइल से होती है और इसका नुकसान भी बहुत बनना पड़ता है, जो सिविलियंस होते हैं उनको भी मानना पड़ता है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, जो आपकी मिलिट्री है वो लड़े, सिविलियंस उस अफेक्टेड ना हो, लेकिन आजकल जो लड़ाई होती है उसमें काफ़ी सारे सिविलियंस भी अफेक्टेड होते हैं। तो किस प्रकार का वो दिव्य लड़ाई होता था पहले और खासकर देवता और असुरों के बीच में, इसका कुछ इसमें ग्लिम्सेस हैं। और हमें से कईयों को फाइटिंग सीन देखना अच्छा लगता है ना, होता है ना मार धाड़, तो ये वाली इच्छा भी हमारी पूरी करती है क्या श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है और हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो जिनकी ये इच्छा है कि मुझे थोड़ा फाइटिंग देखना है, अपने फाइटिंग में मैं थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो वो वाली इच्छा हमारी पूर्ति होती है ऐसे प्रसंगों को पढ़ के। दूसरा ये है कि क्यों ऐसे प्रसंग दिए जाते हैं। आप देखेंगे महाभारत की जो लड़ाई हुई उसका भी बहुत डिटेल्स में है। जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा तो 18 दिन की जो लड़ाई है हर एक दिन का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है, इतने घोड़े मरे, इतनी हाथियां मरे, इस दिन ये व्यूह रचा गया, एक दिन चक्रव्यूह रचा गया, एक मकर के रूप पर रचा गया, एक दिन मत्स्य के रूप पर रचा गया, तो हर एक दिन का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है किस प्रकार से सेना ने, अलग अलग सेनाओं ने कौन कौन से स्ट्रैटेजीज बनाई है ना जिससे उन्होंने लड़ाई किया। जब उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने भी अटैक किया लंका पे, तो उसमें भी वो पूरे स्ट्रैटेजीज हैं कि कितने वानर मारे गए, कितने राक्षस मारे गए, कौन कौन से योद्धा है, किस प्रकार से मारे गए, तो इतना डिटेल्स में क्यों है। कई बार लग सकता है कि अरे क्या है लड़ाई वाला सीन है, क्यों फाइटिंग करना खत्म करो, मर गए इतने लोग, मर गए असुरों का नाश हो गया, लेकिन इतना डिटेल्स क्यों है, कई बार ये भी कंफ्यूजन आता है मन में। तो देखिए लड़ाई तो बहुत सारी होती है, अभी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इन लड़ाई का हमारे जीवन से कोई लेना देना है, लेकिन ये जो लड़ाई हुई है बहुत विशेष है। जो महाभारत की लड़ाई हुई है वो विशेष है, क्यों विशेष है, क्योंकि वहां पे कौन प्रेजेंट है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रेजेंट है। तो जहां भी कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो वो चीज जो है साधारण नहीं रह जाती है, वो चीज क्या बन जाती है, दिव्य बन जाती है। उसी तरह महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण उपस्थित है तो वो पूरी की पूरी लड़ाई क्या होगी, दिव्य होगी। अब उसके डिटेल्स में जितना जाएंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा, इसलिए वो डिटेल्स दिया गया, कौन सा सैनिक मारा गया, कितने उनके योद्धा थे, कौन सा अस्त्र यूज किए गए, कितने हाथी, जितना हम डिटेल्स में जाएंगे, जितना उसको हम ध्यान से सुनेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि वो साधारण लड़ाई नहीं, वो दिव्य बन चुका है क्योंकि वहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। उसी तरह रामायण में जो राम और रावण का युद्ध हुआ वो भी इसी प्रकार से, जितना हम डिटेल्स में जाएंगे, जितना ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो हमें शुद्ध करेगा। तभी तो इतने डिटेल्स में बता रहे सुखदेव गोस्वामी, किसको बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को, डिटेल्स में बताने की जरूरत क्या थी ना, हर एक चीज आप देखेंगे बहुत सारी डिटेल्स हैं, इतने बताने की जरूरत क्या है, क्यों, क्योंकि वो लड़ाई जो है कि साधारण लड़ाई नहीं है। इससे पहले ये भगवान ने कौन सा रूप धारण करके आए, अभी इस चैप्टर से पहले मौनी रूप धारण करके आए, और मौनी रूप धारण करके इन्होंने क्या किया, क्यों मौनी रूप धारा उन्होंने, अमृत को पिलाया, किसको पिलाया, देवताओं को पिलाया, लेकिन इससे बहुत गुस्सा चढ़ गया, किसको, असुर। ये असुरों का नेचर है कि किसी भी, अगर किसी को कोई भी चीज प्राप्त हो जाती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है, अरे ये व्यक्ति मेहनत हमने भी किया और इनको मिल गया, अमृत इनको मिल गया, तो अंदर से इतना उनको गुस्सा आया, बट अब तो उनको लड़ाई करके ही छोड़ेंगे, तो सबने उनके ऊपर अटैक कर दिया, देवताओं के ऊपर। अब अटैक किया तो लड़ाई हुई। अब इसमें जो असुरगण होते हैं उनके पास माया शक्ति भी बहुत सारी होती है, तो फिर बाद में वो माया के अलग अलग तरीके से असुरों को डिफीट करने के लिए नाना प्रकार के माया की रचना करने लगे। तो फिर जो है देवताओं ने फिर किसका आह्वान किया, भगवान का आह्वान किया, फिर यहाँ पे भगवान है। अब देखिए ये जो लड़ाई हो रही है इसमें भगवान में कितना ज्यादा इंटरफेरेंस है, कितना ज्यादा उसके अंदर आ रहे हैं, डिटेल्स में आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो लड़ाई हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं कोई साधारण नहीं है, तो इसको हमें ऐसे इग्नोर नहीं करना, ये लड़ाई वाला चैप्टर है प्रोजी, इसको जल्दी जल्दी निकालो, ऐसा नहीं। तो दीज थिंग्स विल हेल्प अस टू प्यूरिफाई अस, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इतना डिटेल्स में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंस ऑफ कृष्ण है, भगवान जो आते हैं पर्सनली आते हैं, तो जहां भी भगवान उपस्थित हो गए वो चीज दिव्य हो गई, वो साधारण नहीं रहेगा। जैसे कोई साधारण व्यक्ति है अगर वो हरिनाम लेना शुरू कर देता है तो साधारण नहीं रह जाता है ना, उसी तरह कोई भी घर है, जैसे ये वाला घर है, इससे पहले 2005 से पहले ये क्या था, 77 नंबर 41 नंबर कोठी, 77 नंबर क्या था, बैंकेट हॉल थे या शादियां होती थी, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, धाम बन चुका है, राधिका रमण जी के घर बन चुका है, तो ये अब क्या बन चुका है, ये दिव्य हो गया, ट्रांसेंडेंटल हो गया, तब ये कोई साधारण जगह नहीं रह गई। उसी तरह कृष्ण का उपस्थिति जिधर आ जाता है वो व्यक्ति, वो स्थान, वो समय, वो काल, हर एक चीज क्या बन जाती है, दिव्य बन जाती है। तो ये युद्ध में भगवान की उपस्थिति भी है, इसलिए ये जो युद्ध है वो कोई साधारण युद्ध नहीं है। तभी आप डिटेल्स में सुनिए क्या हुआ। सात से अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उस समय यूज किए जाते थे, आप नोट कीजिए, अभी तो सब खट 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 बंदूक चलाते हैं, मिसाइल चलाते हैं, एक ही तरह की आवाज आती है, लेकिन इसमें अलग अलग तरह की आवाज आएगी। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाए गए, शंख, तुर्य, तुरहियो, पता नहीं क्या है, ढोल, युद्ध में लोग ढोल लेके जाते थे, भेड़िया, डमरी, डमरू की आवाज के साथ साथ हाथियों, घोड़ों तथा रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकलती ध्वनिया से कोलाहल पूर्ण था। इतने सारे साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे थे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से और अलग अलग जानवरों के माध्यम से। तो ये जो जानवर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, ये कोई वो पेट जानवर नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे वहां जाके, जैसे अभी हम हाथी देखते हैं आराम से घूम रहे हैं, ऐसे नहीं, बहुत खूंखार हाथी होते थे ये सब, हाईली ट्रेंड और प्रोफेशनल एलिफेंट्स इन फाइटिंग। और भारत में अभी भी जब मुगल आए तो मुगलों को भी बहुत दिक्कत हुआ कि जब हाथी पे चढ़ के जब किंग्स लड़ाई करते थे उनको पता ही नहीं होता था हाथी से कैसे डील करें, वो घोड़े पे आते थे, घोड़े को हाथी ऐसे पलटा देता था, तो हाथी पे भी लड़ाई होती थी। इसलिए आप देखेंगे जितने भी महल हैं, आप जितने भी, आप में से कितने लोग जयपुर गए हैं कभी, तो जयपुर में जो पैलेस है, तो जितने भी पैलेसेस होते थे उनका जो दरवाजा होता था बहुत बड़ा बड़ा होता था, ऐसे नॉर्मल हाइट जो व्यक्ति की कितनी होगी, 6 और 7 फीट 8 फीट, लेकिन वो जो हाइट होती थी बहुत ऊंची होती थी। उसका कारण क्या, क्योंकि जो राजा आते थे युद्ध भूमि से तो हाथी पे बैठ के आते थे, मान लो छोटी हाइट होगी तो फिर हाथी अंदर प्रवेश करे। हाथी के साथ आते थे इसलिए उनकी हाइट इतनी ऊंची होती थी। हाथी घोड़े ये सब लड़ाकू होते थे, फाइटिंग में बहुत हेल्प करते थे। ये सब पैदल सिपाहियों से निकलती ध्वनिया से कोलाहल तोड़ता, बहुत तरह के साउंड प्रोड्यूस हो रहे थे। उस युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना से, अश्वारोही विपक्षी अश्वारोहियों से तथा हाथियों पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी सवार सैनिकों से भिड़े। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से फाइट होता था, ऐसा नहीं कि हाथी वाला जो है वो पैदल वाले के साथ भिड़ गया या घोड़े वाला जो हाथी के साथ भिड़ गया। सिस्टमैटिक एक प्रॉपर डेकोरम होता था, जो पैदल वाले हैं किससे फाइट करेंगे और पैदल वाले से, जो हाथी वाले हैं किससे फाइट करेंगे हाथी वाले से, तो प्रॉपर डेकोरम वो मेंटेन करते थे। इस प्रकार समान पक्षों से वही युद्ध होने लगा। कुछ सैनिक ऊंट, अब ऊंट भी है वहां पे ऊंट, कुछ हाथियों, कुछ गधे, गधे भी लड़ाई कर रहे हैं। कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदर, बंदर भी अलग अलग मुंह वाले होते हैं। लाल मुंह वाले बंदर देखे, काले मुंह वाले देखे, बहुत दिख जाते हैं काले मुंह लाल मुंह, लेकिन सफेद मुंह वाले भी स्पेशल मंकीज। कुछ बाघ टाइगर ये भी वहां प्रेजेंट है, कुछ सिंह लायंस ये भी हैं, पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध करे जा रहे थे, बहुत फाइट कर रहे थे आपस में। हे राजन, कुछ सैनिक गिद्ध, गिद्ध समझते हैं, चील और गिद्ध। चील और गिद्ध में क्या अंतर है? वल्चर, वल्चर और ईगल दो अलग अलग पक्षी है। तो गिद्ध हो गए, चील हो गए, बगुला, क्रेन्स ये भी थे, बाज, बाज कौन सा है, हॉक, इसको हॉक बोलते हैं, हॉक, वल्चर्स, ईगल्स तथा भांस पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़े। अब पक्षी के ऊपर बैठ कर उड़ के तो कैसे उड़ के जा रहे हैं ऊपर ऊपर से ऐसे पट से लगाए गए। कुछ ने विशाल मत्स्य तिमी को निगलने वाले तिमंगलों के पीठ पर, तिमिंगला मछली भी आ गई वहां पर, अब ये शायद नेवी होगी इनकी ये एयरफोर्स वो आजकल राइफल और जेट वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए क्या एयरफोर्स के लिए चील, बगला, बाज, भास है, अजय नेवी है, नेवी के लिए कौन सा एनिमल है, तिमिंगला। तिमिंगला ऐसी मछली होती है जो वेल मछली को भी खा लेती है, इतनी बड़ी मछली होती है। कुछ ने सर्पों के पीठ पर तो कुछ ने भैंस, भैंस भी है यमराज को याद दिलाने के लिए, गैंडा, रिनोसोरस, गाय है, बैल, वन गाय जो फॉरेस्ट में गाय रहती हैं, वन गाय तथा अरुणों के पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने सियार, जैकल्स, चूहे, चूहे कैसे चाहे तो चूहों ने अपना शरीर बढ़ा लिया या फिर सैनिकों ने अपना शरीर छोटा कर लिया चूहे, छिपकली लिजर्ड्स हैं उसके ऊपर, खरहा, खरहा मनुष्य, मनुष्य को भी ले लिया, चलो भाई लड़ाई करने के लिए उठा लिया, बकरे, काले हिरण, हंस, सुअर की पीठ पर बैठकर युद्ध किया, मतलब सब बैठ करके इस प्रकार विकृत शरीर वाले पशुओं सहित जल स्थल तथा आकाशकारी पशुओं की पीठ पर बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने होकर आगे बढ़ रही थी। देखिए कितना एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन है कैसे उन्होंने युद्ध किया। हे राजन, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही के सैनिक शत्रुओं रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मूठ वाली छतों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधो वस्त्र के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप से निकली उनकी ढालें, उनके गहने तथा तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के समूहों से भरे हुए दो सागरों के समान प्रतीत हो रहे थे। तो फाइटिंग भी जो एक फेस्टिवल बन गया था। उस युद्ध के लिए सुविख्यात सेनापति विरोचन पुत्र बलि महाराज नामक अद्भुत वायुयान पर आसीन थे। तो यहाँ पे जो लीडर है, असुरों के लीडर कौन है? बलि महाराज। उनके पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम क्या है? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं कौन? बलि महाराज। हे राजन, सुंदर ढंग से सजाया गया वह यह वायुयान मैं दानव द्वारा निर्मित किया गया। तो ये जो स्पेशल वायुयान था, जो स्पेशली डिजाइन था जो बलि महाराज के लिए, वो किसने बनाया था? मैं दानव। और युद्ध के लिए सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत्य तथा अवर्णनीय था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे तथा सर्वोत्तम चमरों से पंखा झले जाते हुए एवं अपने सेना नायकों से घिरे बलि महाराज इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो तथा सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। तो यहाँ पे बलि महाराज का वो किस प्रकार दिख रहे हैं युद्ध भूमि में, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो बलि महाराज के यहाँ स्पेसिफिकली उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगेन, ये कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। हो सकता है उनका जन्म असुर कुल में हुआ और उनके जो वंशज हैं प्रहलाद महाराज, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और फिर यही बलि महाराज, आगे इनके बारे में और बहुत ही डिटेल्स में चर्चा आएगी जब वामन देव स्वयं, जो कि भगवान है, वो स्वयं आते हैं और उनसे तीन पग की याचना करते हैं। इसलिए बलि महाराज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसलिए हमारे कुछ भक्तों का नाम भी पड़ा है इस बार दीक्षा में, तो उनका ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रभु जी ये कैसा नाम है। बलि महाराज जो है महाजनों में से एक है और जो आत्मनिवेदनम है नवदा भक्ति में एक अंग आता है आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदनम के जो आचार्य हैं वो कौन है? बलि महाराज। महाराज बलि को चारों ओर से असुरों के सेनानायक तथा अधिपति घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। इनमें निम्नलिखित असुर थे। अब इन असुरों के भी नाम हैं: नमोची, शंभर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाव, प्रहेति, हेति, इल्वल, सकोनी, भूत संताप, वज्रदंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, ये भगवान का भी नाम है और एक असुर का भी नाम है, शंकुशिरा, कपिला, मेघ दुंदुभि, तारक, चक्रदेव, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्ट नेमी, त्रिपुराधीप, मैं, पुलोम के पुत्र कालेय तथा निवात कपच। इतने सारे नाम। क्यों इनके नाम बताए? क्योंकि ये किसके साथ खड़े थे? बलि। इसलिए स्पेशल बलि, इनका भागवतम में नाम आ गया। असुर है, ऐसा कोई चांस नहीं है इनका भागवतम में नाम आने का। ऐसा कोई मेन फिगर भी नहीं है ये, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप देवदत्त डायरेक्टली वो डील कर रहे थे भगवान के साथ, इसलिए उनका नाम आ गया। लेकिन ये तो सेकेंडरी रोल है, लेकिन इनका भी नाम आ गया। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ खड़े थे? महाराज के साथ खड़े थे तो भागवत में नाम, तो सिंपल फॉर्मूला है, हमें बस अटैच हो जाना है किसके साथ, हाँ भगवान के जो भक्त है उनके साथ जुड़ जाओ, अपने आप आपको सब प्राप्त हो जाए, आपका नाम भागवतम में आ जाएगा। ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे, उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था, उनका उतना ही योगदान था समुद्र मंथन में, श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बुद्ध सुभद्रा महारानी की। तो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में असुरों का उतना ही योगदान था जितना देवताओं का योगदान था, ऐसा नहीं कि स्पेशल देवताओं ने कुछ किया था, लेकिन वो वंचित रह गए किससे, अमृत से। क्यों वंचित रह गए, क्योंकि भगवान का जो कृपा है उसको आकर्षित नहीं कर पाए, तो हम कितना भी श्रम कर लें, लेकिन अगर भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है, तो जब भक्तों की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है तो अमृत रूपी भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी, तो सिर्फ श्रम करने से कार्य नहीं चलेगा। श्रम किसके लिए कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। वहां देवताएं थे, उनका ड्यू परमिशन था, भगवान का पूरी प्लानिंग थी, तो देवता अंडर शेल्टर वो कर रहे थे, क्या जो भी कार्य कर रहे थे, जो भी उन्होंने सेवा की, कौन सी सेवा, समुद्र मंथन की सेवा की, दैट वाज अंडर शेल्टर, अंडर भगवान के जुरिस्डिक्शन के अंदर कर रहे थे, इसलिए भगवान ने ये इनके प्रकार उनको अमृत पिला ही दिया। लेकिन जो सेवा इन्होंने की, किन्होंने, असुरों ने, उन्होंने भी तो सेवा किया उसमें, लेकिन उस सेवा का फल उनको प्राप्त नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वे इंडिपेंडेंट होके कर रहे थे। तो सेवा करनी भी है तो इंडिपेंडेंट सेवा नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कौन प्रसन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यू डोंट नो। इन्होंने सेवा किया अंडर गाइडेंस, अंडर डिपेंडेंस ऑफ कृष्णा, इसलिए उनको प्रॉपर उसका फल प्राप्त हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी बन गई किसकी, भगवान की, उनकी जिम्मेदारी थी, भाई मेरे अंडर इन्होंने सेवा किया, उनको कृपा मिलनी चाहिए, मिली। लेकिन वो लोग थे असुर थे, सेवा तो किया लेकिन कोई अंडर गाइडेंस, कोई शेल्टर में नहीं किया, इसीलिए वो श्रम एव केवलम ही रह गया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था, सिर्फ श्रम एव केवलम तक सीमित रह गया, क्योंकि वो अंडर गाइडेंस उन्होंने ये सेवा नहीं की थी। अब वे सुरों के लिए विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेवाओं सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलभीत अर्थात इंद्रदेव, तो इंद्रदेव का एक और नाम ऐड कर लीजिए अपने डिक्शनरी में, वो क्या है, बलभीत, बलभीत इंद्रदेव का ही नाम है, अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपाशु, रक्त पिपाशु मतलब, पिपाशा मतलब खून के प्यासे, पिपाशा मतलब प्यास, खून के प्यासे, यहां पानी का प्यास नहीं है, किसका प्यास है, खून का प्यास, और इसमें कई असुर होते होंगे जिनका फूड ही होगा क्या, खून, खून ही पीते होंगे, इसलिए कह रखे हैं रक्त पिपासु, प्रतिद्वंद्वियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हो गए, थोड़े से परेशान हो गए। अब इंद्र के बारे में आते हैं, इंद्र के बारे में बहुत छोटा सा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, जितना डिटेल में बलि महाराज के बारे में बताया उतना डिटेल में इनके बारे में नहीं बताया। इनके आसपास ही बहुत सारे देवता लोग थे, तो उन देवताओं का नाम नहीं आया इसमें, वो देवता थे लेकिन उनका नाम नहीं आया, वो असुर थे फिर उनका एकदम देखिए कितना सारे नाम पढ़ पढ़ करके आ गए। तो ये डिफरेंस है कि किसके साथ हम खड़े होते हैं और किससे अपने आप को जोड़ते हैं, शुद्ध भक्तों से जोड़ते हैं, भक्तों से जोड़ते हैं तो भगवान उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये जो श्लोक है आपका अभी बोर्ड पे, ये 25 नंबर श्लोक है, ऐरावतम दिक्कर्णम आरूढ़ा शुशुभे स्वराट यथा स्त्रवत पस्त्रवर्णम प्रस्तवनम उदयत्रिम अहपति ऐरावतम दिक्कर्णम आरूढ़ा सुशुभे स्वरा यथास्त्रवत् पस्त्रवणम् उदे अद्रिम अहपति। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है, ऐरावतम ऐरावत पर दिक्कर्णम सर्वत्र जा सकने वाले विशाल हाथी। तो ये इस हाथी का बहुत ये स्पेशल फीचर है कि सभी जगह जा सकता है। जनरली हाथी बहुत स्लो स्लो आराम से जाते हैं, सभी जगह जा भी नहीं सकते, लेकिन ये ऐसा हाथी है जो दिक्कर्णम है, मतलब हर एक जगह वो जा सकता है। और ये रावत इनको कहाँ से प्राप्त हुआ? अभी अभी जस्ट इनको मिला था रावत, थोड़े समय पहले समुद्र मंथन से। आरूढ़ा सवार होकर उस पर एकदम सवार हो गए इंद्र। शुशुभे देखने में अत्यंत सुंदर लगने लगा। स्वराट इंद्र, अब इंद्र का एक और नाम यहाँ पे है स्वराट। यथा जिस तरह, स्त्रवत बहते हुए, पस्त्रवणम सुरा की लहरें। सुरा मतलब शराब वाइन। उदय अद्रिम, अद्रिम मीन्स पर्वत, उदयगिरी, उदयगिरी पर, उदयगिरी पर बोली उदयगिरी। अहापति ही सूर्य। तो इसका सलाह तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, एक ऐसा हाथी जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए जल तथा सुरों को संचित रखता है। ऐसे रावत हाथी पर चढ़कर इंद्र ऐसा लग रहा था मानो उदयगिरी से जहां जल के आगार हैं सूर्य निकल रहा। इसका तात्पर्य इस प्रकार से, उदयगिरी पर्वत की चोटी पर अनेक झीलें हैं जहां से झरनों के रूप में निरंतर जल झड़ता रहता है। इसी प्रकार इंद्र का वाहन ऐरावत जल तथा सुरा संचित रखता है और इंद्र की ओर इनकी फुहार छोड़ता रहता है। इस प्रकार ऐरावत की पीठ पर बैठा इंद्र उदयगिरी से ऊपर उठते तेजस्वी सूर्य की भांति प्रतीत हो रहा था। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सा पदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवाश्च श्रीरूपं सार्वजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाफलपतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एरावत का ही गुणगान हो रहा है, इसे लेकर तो स्पेशल हाथी है एरावत। और इंद्र को जब भी युद्ध भूमि में जाते हैं तो इंद्र के लिए रिजर्व्स रखता है। किससे किसकी रिजर्व्स रखता है? वो वाटर का और वाइन का, शराब का भी। तो जब भी गर्मी आती है या धूप लगता है या थके हैं तो इन दोनों चीजों को वो क्या करता है? फुहार करता है, शावर करता है, ताकि वो फैटीनेस से और जो भी उनकी थकान हो रही है वो समाप्त हो जाए। तो स्पेशल हाथी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एरावत का ही एक तरह से ग्लोरिफिकेशन किया बलि महाराज का। वहां पे क्या इतना डिटेल्स में युद्ध भूमि का वर्णन हो रहा है, हर एक चीज का वर्णन हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है जैसे हमने चर्चा किया? क्योंकि साधारण युद्ध नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी समय के बाद भगवान स्वयं आएंगे और असुरों का जो माया जाल होगा वो सारे माया जाल को वो समाप्त करने वाले हैं। इसलिए वो एक स्टेज बना रहे हैं। जैसे कोई भी क्लाइमेक्स होता है तो क्लाइमेक्स से पहले पूरा स्टेज सेट करना पड़ता है, एक मूड सेट करना पड़ता है। एकदम से क्लाइमेक्स दिखा दे तो वो फील नहीं आता। तो फील को लाने के लिए पूरा का पूरा एक स्टेज बनाना पड़ता है, एक मूड सेटअप करना पड़ता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है अभी वो एक स्टेज बना रहे, एक हमारा एक मूड क्रिएट कर रहे हैं कि देखो उस युद्ध स्थली में जिसमें स्वयं भगवान विष्णु का आना पड़ा वो युद्ध स्थली कैसा था, उसमें किस प्रकार के अलग अलग वाहन थे, किस प्रकार के योद्धा थे, किस प्रकार से लड़ाई हो रही थी। तो एक मूड बना रहे हैं। एक मूड बनाने के बाद हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य का अलग ही फ्लेवर होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको बोला जाए आज ये आप सबके लिए बाबूजी प्रसाद है, प्रसाद में आपके लिए छोले हैं, राजमा है और एक स्वीट है, स्वीट में भी वो फ्रूट क्रीम है और चावल है, बहुत स्पेशल है चावल। चावल जो है वो बहुत ही पतला वाला चावल है, बासमती चावल है, उसमें थोड़ा जीरा का छौंका लगाया गया है। और उसका जो पनीर है वो भी बहुत स्पेशल है। पनीर को बनाने के लिए हमने स्पेशल दूध मंगाया था, वो दूध आया था राजस्थान से। राजस्थान की जो गायें थी वो गायों के द्वारा दूध बनाया गया, फिर उसका पनीर बनाया गया। फिर हमारे पास बहुत स्पेशल रसोइये हैं जो प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं और स्नान करने के बाद किचन को साफ करने के बाद उन्होंने सब्जी बनाई है। और आप सबके लिए गरम गरम चपाती है, चपाती वो भी जो फुटबॉल की तरह है। आप जब बैठेंगे तो आपको फुटबॉल की तरह चपाती मिलेंगी। सब कुछ वेरी हॉट, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। इतना डिटेल्स में आपको बताया जाएगा, कितनों की इच्छा होगी कि प्रभु जी आज प्रसाद तो मंदिर में ही लेंगे। कितनों का मन बनेगा? हो सकता है घर में आपने ब्रेकफास्ट बनाया हो, लेकिन इतना डिटेल्स सुनने के बाद आपकी एक अभिलाषा जागृत हो जाती है कि नहीं हम मंदिर में ही प्रसाद लेंगे। तो इसी तरह स्टेज बनाने का, मूड बनाने का ये उद्देश्य है सुखदेव। मतलब भेड़िए चील गधे अपने आप में क्या एग्जिस्टेंस है, भागवतर में क्यों नाम आ रहा है? जस्ट टू गेट द मूड। इसी तरह ये मूड को क्रिएट करना काफी आवश्यक है। जब हम भक्ति भी करते हैं तो भक्ति को भी ऐसे एक प्रॉपर मूड से करना चाहिए, प्रॉपर डिटेल्स में करना चाहिए। कोई साधारण व्यक्ति भी कोई भी काम अगर प्रॉपर मूड से करता है तो लोग उसके पीछे आकर्षित हो जाते हैं। घिनौने कार्य भी करते हैं लेकिन प्रॉपर डिटेल्स में करते हैं, प्रॉपर मूड में करते हैं तो लोग आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं इसमें सब कुछ ना कुछ है। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो बता रहा था कि मुझे बचपन तक या कृष्णा कॉन्शियस आने तक से पहले तक ये पूरा विश्वास था कि शराब में बहुत आनंद है. I was fully convinced that wine has some happiness. बोला ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने अपने पिताजी के अंदर देखा. मैंने क्या देखा अपने पिताजी के अंदर? तो मेरे पिताजी क्या करते थे, प्रतिदिन उनका शेड्यूल था, उनका शेड्यूल था. वो ठीक 7 बजे घर आते थे, कपड़े उतारते थे, शावर लेते थे, कपड़े पहनते थे, एक पूरा उनका टेबल था, 5 बोतलें होती थी, वो भी अलग अलग कलर्स की होती थी, डिफरेंट बॉटल, उसके साथ कुछ खाने का, पॉपकॉर्न वट एवर, कुछ नमकीन, 5 बॉटल्स और कुछ ग्लासेस. वो ग्लासेस भी बहुत अच्छी स्टाइलिश ग्लासेस वो रखते थे. ठीक 7:30 पे, 7:30 बजे एक कोई सीरियल आता था, तो मेरे पिताजी का हाथ जो है ठीक 7:30 बजे जाता था रिमोट पे, ऑन करते थे टीवी और वो इस तरह से डालते थे, एक सिप उसका प्याले का, एक सीन सीरियल का या मूवी का और एक दाना जो भी. इतना वो एरिस्टोक्रेटिक और सोफिस्टिकेटेड वे से करते थे कि मेरा मन तो पूरा हो गया कि पिताजी को इतना आनंद आ रहा है. तभी तो ये लगातार किए जा रहे, लगातार 20-25 साल से आज तक वो कर रहे हैं, ब्यूटीफुली कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ है. तो मैं भी एक दिन अपने पिताजी के जैसा क्या करूंगा, इसी प्रकार से शराब पीऊंगा, 5 की बोतल 7 बोतल रखूंगा और ये जो ग्लासेस है उसको अच्छा रख लेंगे. तो कोई भी चीज हम जितना डिटेल्स में जाकर के, इवन गंदी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन जितना ब्यूटिफुली कर रहा था व्यक्ति, उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं. आजकल देखिए आजकल हो क्या रहा है, आजकल जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे मतलब जो जनरल जनमानस है, उनका जो रोल मॉडल्स है वो कौन है? फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स, हर एक गंदी काम करते हैं वो, सिगरेट पीते हैं, इतना स्टाइल से पीते हैं, इतना उसको डंके की चोट पे पीते हैं कि सबको ये लगता है कि अरे अगर मैं कूल तभी होऊंगा जब मैं इनकी तरह सिगरेट पीऊंगा या इनकी तरह शराब पीऊंगा या इनकी तरह इलिसिट सेक्स करूंगा. इसी तरह से ये बहुत एक उदाहरण से मैंने आपको इसलिए ऐसा उदाहरण दिया ताकि किसी भी कार्य को अगर हम सही डिटेल्स में जाकर के प्रॉपर इलाबोरेट तरीके से करते हैं तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है. तो उसी तरह अपनी भक्ति को भी हमें ऐसे नहीं, हाँ जी हरिनाम मिल गया, प्रसाद मिल गया, भक्त मिल गया तो ठीक है, ऐसे इट्स नॉट लाइक दैट. इसको भी उतना ही डिटेल्स में जाकर के बहुत ही इलेबोरेट तरीके से करना चाहिए क्योंकि इससे बड़ी चीज जो है और है ही नहीं. प्रसाद भी बना रहे हैं या भोग बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आपका बर्तन पूरा साफ होना चाहिए, चूल्हे पूरे साफ होने चाहिए, आपने स्नान किया हो, आपके नेल सारे कट होने चाहिए, आपके हेयर्स बंधे हो या मुंह में आपका वो मास्क लगा हो, है ना, तेल कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, जीरा कितना डालना है, पूरा एग्जैक्ट प्रोपोर्शन हो, उसमें कितना हीट में कितना वो लाल होगा तब उसको उसमें पानी डालना है, चपाती का जो सर्कल है वो कितना हो, हर एक चीज, आपका जो प्लेट है उसमें जो तुलसी पत्र है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में जाकर के हम करते हैं तो उसका अलग ही आनंद आता है. अरे ऐसे तैसे कर दिया है, जी भोग बनाना है, 12 बजे कर दिया तो उसका जो आनंद जो जो होना चाहिए, जो फ्लेवर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता. सेम थिंग हर एक बुक रीडिंग हम करते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, एक होता है कि समय देखा 8:56, हाँ जी पूरा पढ़ लिया, 9:30, 9:56 हो गए, बस बंद कर दिया. नहीं, दूसरा क्या है कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या बोला है, इसके हर एक वर्ड का शब्दार्थ, इसका एक शब्द का ये क्या मतलब है, सलाद का क्या मतलब है, ईश्वर प्रभा जी ने क्या समझाया है, उससे कुछ प्रश्न बनाए, उसको अंडरलाइन करें। उसी चीज का हम डिटेल्स में जब करते हैं तो उसका अलग ही एक आनंद आता है, अलग ही रस आता है, और वो हमें शुद्ध करता है। उससे होता क्या है कि हमारा मन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो मन हमारा एब्जॉर्ब होता है। अगर डिटेल्स हम नहीं जाएंगे तो मन कैसा रहेगा, वो भटकता रहेगा। जब भी वो रिचुअल्स की तरह हो गया कि रिचुअल्स की तरह करे तो मन कहीं और है, कर कहीं कुछ और है। हरे के डिटेल्स में जाएंगे तो मन का एब्जॉर्प्शन उसमें लगता है। उसी तरह हरिनाम है या प्रसाद सेवा है या भक्तों का संग है, हर एक चीज का डिटेल्स में जाने से मन एब्जॉर्ब होगा, मन उस गतिविधि में लगेगा। जब मन उस गतिविधि में लगेगा तब जाके मन शुद्ध होगा। सतही स्तर पे जो है रहने से बस ऊपर 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 कह रहे सतह पे ही है, लेकिन अंदर डीप नहीं जा रहे तो फिर उतना आनंद नहीं मिलेगा, उतना शुद्धिकरण नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये डिटेल्स में जाना भक्ति के हर एक गतिविधियों में ये बहुत ही आवश्यक है। उसी तरह हम लेक्चर सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो हर एक चीज का डिटेल्स में जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा इस प्रसंग से हमें यह भी सीखना चाहिए कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। कई बार लगता है लोगों को जो ये जो माइथोलॉजी है, जैसे गधे कहाँ से आ गए, चील कहाँ से, चील पे कौन बैठ सकता है, चील तो गिर जाएगी उस पर कोई बैठेगा तो, चूहे हैं, चूहे कदम बैठे, चूहे तो चिपक के मर जाएगा, तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। जैसे एक बार वो प्रसंग आता है जो एक ब्राह्मण और एक कॉबलर होता है, एक चमार होता है, तो उधर से नारद जी जा रहे होते हैं तो ब्राह्मण ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं वैकुंठ लोक जा रहा हूँ। तो उनसे ये पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा, मैं कब वैकुंठ लोक पाऊंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जब आगे जाते हैं तो एक चमार उनको मिलता है, तो चमार ने भी यही प्रश्न पूछा। तो जब वहां वैकुंठ लोक में गए तो भगवान से उन्होंने पूछा, तो भगवान ने क्या बोला कि ये जो कॉबलर है, ये जो चमार है, ये बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसके उसका जो है बहुत विश्वास है मेरे ऊपर, बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। लेकिन ये जो ब्राह्मण है ये बोलता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका मेरे ऊपर कोई श्रद्धा नहीं है, उस नाम का ब्राह्मण है ये। बोला ऐसे कैसे, इतना दिनों से ये पूजा पाठ करता है, ये करता है, बोले तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या? तो तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, उसको जाओ और बोलो कि अगर वो पूछे कि भगवान क्या कह रहे थे, तो तुम बोलना क्या कि भगवान जो है सुई का जो आंख होता है उसके अंदर से किसको निकाल रहे थे, हाथी को निकाल रहे थे। बस ये बोलना, आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितनी श्रद्धा है। जब वो ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण ने बोला कि क्या आपने पूछा, बोले हाँ पूछा तो था। तो क्या बोला उन्होंने, बोला कि आपका उद्धार बहुत लेट होगा। बोला ऐसे कैसे, तुम गए ही नहीं थे, तुम झूठे हो, बताओ गए थे तो भगवान क्या कर रहे थे वहां पे। तो उन्होंने बोला क्या कि भगवान जो है एक हाथी को एक सुई की आंख के अंदर से निकाल रहे थे। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, सुई का जो आंख होता है इतना छोटा होता है और हाथी इतनी बड़ी होती है, कैसे उसमें से निकाल सकते हैं, तुम गए नहीं, तुम झूठे हो। नारद जी समझ गए किसकी श्रद्धा नहीं है। फिर वहीं पे आते हैं मोची के पास, मोची भी प्रश्न ऐसे बातचीत होती है, तो भगवान क्या कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भगवान जो है हाथी की सुई से नहीं, सुई की आंख से हाथी को बाहर निकाल रहे थे। वो बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद में आ गया कि वाह भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बड़गद का वृक्ष होता है, बड़गद का वृक्ष का जो बीज होता है इतना छोटा होता है, लेकिन वही बड़ा होते होते कितना विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह भगवान के लिए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, हर एक चीज वो कर सकते हैं। और खूब उन्मत्त होकर वो नृत्य करने लगे स्ट्रेसी मार गया। तब नारद मुनि बोला क्या, हाँ कि इसकी जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ है और उसकी जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ नहीं है। इसलिए भक्ति में जो पहला स्टेप है वो क्या है, आदौ श्रद्धा। भगवान भी बोलते हैं क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस ज्ञान की प्राप्ति किसको होगी? जो श्रद्धावान है, जिसको पूर्ण श्रद्धा है भगवान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, उसी को वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसी तरह जब ऐसे प्रकार का प्रसंग उठता है कि गधे पे बैठकर, चूहों पे बैठकर, चील पे बैठकर, तो कई बार लोगों को लगता है ये ऐसे कैसे है, होता है कि नहीं होता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अपने शरीर में हम देखिए इतना चमत्कार हो जाता है। गाय को देखिए, गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है और क्या देती है? दूध देती है। और हम गुलाब जामुन रसगुल्ले खाते हैं, क्या प्रोडक्ट देते हैं? डू वी गिव एनीथिंग गुड टू अदर्स? हम लेते ही हैं बस, ऑक्सीजन ले लिया, दूध पी लिया, सब्जी खा ली, कुछ दिया? गंदगी दी, और कुछ तो दिया नहीं। उसी तरह हर एक चीज जो है, एक बार ऐसे एक छोटा सा बालक बच्चा था और एक प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर का और उस बालक के बीच में यही थोड़ा विवाद हो गया कि भगवान नहीं है, प्रोफेसर का भगवान नहीं है। तो बालक ने बोला कि ठीक है, अब देखिए जो घोड़ा होता है वो भी घास खाता है, जो हाथी होता है वो भी घास पत्ते ये सब खाता है, जो गाय होती है वो भी घास, फूड जो है तीनों का सबका अलग अलग, एक ही, घोड़े का, गाय का, हाथी का, सबका फूड एक ही, लेकिन उनका जो मल होता है सबका अलग अलग होता है। घोड़े का मल अलग होता है, गाय का मल अलग होता है, हाथी का मल अलग होता है। आप पहले इसको एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों होता है? पता है, बोले जब मल को नहीं समझ सकते जब मल को नहीं समझ सकते तो भगवान के बारे में क्या समझोगे? तो पहले इस पर रिसर्च करके आओ। खाना तो तीनों का एक है, लेकिन जो उनका एक्सक्रीशन है वो अलग अलग है। क्यों ऐसा होता है? डू रिसर्च ऑन दिस फर्स्ट, देन गो फॉर गॉड। इसीलिए श्रद्धा का होना काफी आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसी ज्ञान। तो कभी हमें ऐसा इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए कि क्या उदयगिरी है, क्या वो ऐरावत पर्वत, क्या वो सुमेरु पर्वत, ऐसे ऐसे। जब पांचवा स्कंद आया था तो बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से हैं जिसपे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार से हमें श्रद्धा अपनी कम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचिंग्स हैं, लेकिन समय हमारा हो चुका है। किसी कोई प्रश्न, एनी जिज्ञासा? नो। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ग्रंथ।